आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक जो है उसमें हम पृष्ठ संख्या 91 पर आ गए, 91। यहाँ हम सन्निकर्ष देख रहे हैं और वो भी आदेश में, मार्गणाओं में देख रहे हैं। अब 91 पृष्ठ पर नीचे के पैराग्राफ में हम देखते हैं, आनंद से लेकर नव ग्रेवेक तक के देवों में जो मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, वहां तो मिथ्यात्व की अल्पतर ही होगी। वह 12 कषाय और 9-9 कषायों की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, क्योंकि अन्य की भी वहां अल्पतर ही होती है। इसके अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है और कदाचित नहीं है। कदाचित नहीं है, हाँ, भी संयोजना की अपेक्षा, और जिसके है वह भी अल्पतर ही होगा। यदि है तो उसकी अपेक्षा यह कदाचित, ओ अवक्तव्य भी लिया, कदाचित अल्पतर विभक्ति वाला है और कदाचित अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाला होता है। विसंयोजना के बाद आनंद से लेकर ग्रेवेक तक है तो मिथ्यात्व में आ सकता है, तो मिथ्यात्व में आने पर भी मिथ्यात्व की तो अल्पतर ही चलेगी कंटिन्यूस, परंतु इसकी अवक्तव्य हो जाएगी अनंतानुबंधी। तथा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व कदाचित है और कदाचित नहीं है, क्योंकि 26 की सत्ता वाला भी होगा वहां कोई, मिथ्यात्व की अल्पतर चलेगी और इनकी सत्ता ही नहीं है। यदि है तो इनकी अपेक्षा कदाचित भुजगार स्थिति विभक्ति वाला, कदाचित अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला, कदाचित अवक्तव्य और कदाचित अवस्थित स्थिति विभक्ति वाला होता है, क्योंकि वहां सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में प्राप्त होगा। तो इनमें ये चारों पद बन सकते हैं। इसी प्रकार 12 कषाय और 9-9 कषायों की अपेक्षा में सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी आनंद से लेकर 9 ग्रेवेक तक में 12 और 9-9 कषाय, 12 कषाय 9-9 कषाय, इनका एक अल्पतर ही होगा। अब उसके साथ मिथ्यात्व का भी अल्पतर ही होगा, उसके साथ अनंतानुबंधी कदाचित है कदाचित नहीं है, हाँ अवक्तव्य और अल्पतर दोनों हो गए, और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व जो है उसमें भी चारों पद बनेंगे। किंतु इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है, ये सबको कदाचित है कहा, क्योंकि शायिक समय दृष्टि के ये 12 कषाय 9-9 कषाय तो है और ये नहीं है। शायिक समय दृष्टि 12 और 9 21 की सत्ता वाला है, तो उसके लिए उसके कथन में ये लिखना कि ये कदाचित है कदाचित नहीं है। मिथ्यात्व के कथन में ऐसा नहीं लिख सकते थे, उसके बारे में तो केवल अनंतानुबंधी कदाचित है नहीं है कहा था, और सम्यक मिथ्यात्व कदाचित नहीं है ऐसा भी लिखा था, परंतु जहां मिथ्यात्व है वहां 12 कषाय तो हमेशा होगे ही, परंतु जहां 12 कषाय 9 कषाय है वहां मिथ्यात्व होगा ही ऐसा नहीं, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि के वो नहीं होगा। हाँ सभी वो सातों प्रकृति उसके नहीं होगी, ऐसे हो सकता है। अब 92 पेज पर आए अभी,
यहाँ पे भी कृत प्रति वेदक तो होगा, सम्यक तो की सत्ता हो सकती है ये 21 की।
हाँ सम्यक तो की,
एक सम्यक तो की,
अकेले सम्यक तो की हो सकती है, तो वो बता दिया ना उसकी सत्ता है भी नहीं भी है। अब उन्हीं के बारे में सम्यक्त्व की जो अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, आनंद से लेकर ग्रेविक तक की बात चल रही है, तो सम्यक्त्व की जो अल्पतर वाला है वह मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, किंतु इतनी विशेषता है कि कदाचित मिथ्यात्व है, यानी कदाचित नहीं है। क्यों ऐसा कहा? कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा सम्यक्त्व की अल्पतर चल रही है और उसके मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं है। अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है, यदि है तो उसकी अपेक्षा यह जीव कदाचित अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला और कदाचित अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाला है, क्योंकि अवक्तव्य विसंयोजना के बाद संयोजना करने वाले को अवक्तव्य भी होगा। सम्यक मिथ्यात्व कदाचित है, यदि है तो उसकी अपेक्षा नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है। सम्यक्त्व के साथ सम्यक मिथ्यात्व है तो समझ सकते हैं कि उसका भी अल्पतर होगा, परंतु नहीं है कब होगा? सम्यक्त्व की अल्पतर है और सम्यक मिथ्यात्व की नहीं है कृतकृत्य वेदक में। और यदि हम कहेंगे कि सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर चल रही है और सम्यक्त्व नहीं है उद्वेलना में, अब सम्यक्त्व की अल्पतर की बात हो गई। अब कहते जो सम्यक्त्व की भुजगार स्थिति विभक्ति वाला है, सम्यक्त्व की भुजगार कब होती है?
पहले समय में।
हाँ, सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले समय में। वह मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं तो उस समय पूर्व स्थिति से मिथ्यात्व की स्थिति गल जाएगी, तो वह अल्पतर हो जाएगा। मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषाय, 16 को भी ले लिया। सम्यक मिथ्यात्व की नियम से भुजगार स्थिति विभक्ति वाला है, जिसको सम्यक्त्व की भुजगार है उसके सम्यक मिथ्यात्व की भी भुजगार है। इसी प्रकार अवक्तव्य पद का भी सन्निकर्ष करना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि यह कदाचित सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति वाला है, यह अवक्तव्य पद सम्यक्त्व में लगाना। सम्यक्त्व में अवक्तव्य दो प्रकार से होता है, एक तो 26 प्रकृति वाला जीव सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो उसके सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व तो दोनों का अवक्तव्य होगा, और यदि 27 प्रकृति वाला सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो क्या होगा? सम्यक मिथ्यात्व का अवक्तव्य नहीं कहेंगे, तभी उसका भुजगार होगा और सम्यक्त्व का अवक्तव्य होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं इसी प्रकार अवक्तव्य पद का भी सन्निकर्ष करना, 92 पेज, किंतु इतनी विशेषता है यह कदाचित सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति वाला है और कदाचित अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाला है। ये ख्याल में आई बात? 26 या 27 की सत्ता वाला जब सम्यक प्राप्त करता है, सम्यक मिथ्यात्व का भंग सम्यक्त्व के समान है। वहां क्षपणा की अपेक्षा हमने उसको लिया, यहाँ उद्वेलना की अपेक्षा ले सकते हैं, किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति वाले के सम्यक्त्व कदाचित है ऐसा कहना चाहिए, यानी दोनों की अल्पतर चल रही है तो कदाचित है, परंतु ऐसा भी होता है ना कि कदाचित नहीं भी है, क्योंकि सम्यक्त्व की उद्वेलना पूरी हुई है और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना चल रही है तो उसका तो अल्पतर चल रहा है और सम्यक तो है ही नहीं है। और जो सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य विभक्ति वाला है वह सम्यक्त्व की नियम से अवक्तव्य विभक्ति वाला है। अवक्तव्य कब होगा? 26 की सत्ता वाला उपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तब, तो दोनों की सत्ता एक साथ विद्यमान हो जाएगी। जो अनंतानुबंधी क्रोध की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व 15 कषाय और 9 कषायों की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है। हमने जब ओघ में देखा था जनरल कथन, तो जहां अनंतानुबंधी क्रोध का अल्पतर होगा वहां अन्य 15 कषाय मिथ्यात्व का अल्पतर भी हो सकता है, भुजकार भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है, परंतु यहां आनत से लेकर ग्रेवेक तक की बात चल रही है, तो उसमें तो अल्पतर वाला ही होता है। तो अनंतानुबंधी का अल्पतर है तो उनका तो अल्पतर चलेगा ही। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व कदाचित है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, अनादि मिथ्यादृष्टि भी हो सकता है या उद्वेलना पूरी किया हुआ भी है, तो अनंतानुबंधी का अल्पतर चल रहा है और यहां सम्यक सम्यक मिथ्यात्व है ही नहीं है। यदि है तो इनकी अपेक्षा यह जीव कदाचित भुजगार स्थिति विभक्ति वाला, कदाचित अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला, कदाचित अवक्तव्य और कदाचित अवस्थित स्थिति विभक्ति वाला है। चारों ही पद होंगे क्योंकि वहां मिथ्यात्व भी पॉसिबल है, मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व भी होगा, उद्वेलना भी होगी, ये सब वहां हो सकते हैं। जो अनंतानु पहले समय में सम्यक्त्व की भुजगार होती है और सम्यक्त्व के पहले समय में अनंतानुबंधी की अल्पतर हो जाएगी, तो उसके साथ ये भुजगार हो सकती है, अवस्थित हो सकती है, वक्तव्य हो सकती है, चारों ही पद हो सकते हैं। अब कहते जो अनंतानुबंधी क्रोध की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाला जीव है, ये कहां की बात चल रही है? आनंद से लेकर ऊपर की बात चल रही है, यानी वहां रहते हुए उसने विषय योजना की थी, अब मिथ्यात्व में आ गया है तो संयोजना होते ही अवक्तव्य होगा। वह मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला होता है, क्योंकि वहां तो सभी प्रकृतियों की अल्पतर ही होती रहती है। हमने अन्यथा भी देखे थे, अन्य गतियों में भी या नीचे के स्वर्गों में भी या मनुष्यों में भी सम्यक्त्व के से छूटकर मिथ्यात्व में आता है, अनंतानुबंधी का अवक्तव्य होता है तो मिथ्यात्व का तो अल्पतर ही रहता है सभी प्रकृतियों का। और जहां अनंतानुबंधी क्रोध का अवक्तव्य है वहां सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व का क्या होगा? अल्पतर ही उसका तो चालू ही है अल्पतर, मिथ्यात्व में आया तो भी उसका अल्पतर तो चल ही रहा है। अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की नियम से अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाला होता है, क्योंकि जहां क्रोध का अवक्तव्य हो गया वहीं पर मान माया और लोभ का भी अवक्तव्य हो गया, सबकी सत्ता एक साथ विद्यमान होती, उदय भले एक का हो। सम्यक्त्व ऑफ कोर्स मिथ्यात्व में आने पर आवली तक तो उदय नहीं होता है, परंतु बंध चारों का होता है तो उसकी स्थिति विभक्ति अवक्तव्य बन जाती है। उदय की अपेक्षा अवक्तव्य नहीं कहते हैं, सत्ता की अपेक्षा कहते हैं। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला होता है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की अपेक्षा कहना चाहिए, इसी प्रकार शुक्ल लेशा वाले जीवों के जानना चाहिए। 93 पेज। अब अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में यहां तो एकमात्र सम्यक दृष्टि ही है और वहां भी अल्पतर सबका चलेगा, तो अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जो मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति भक्ति वाला है, वह शेष 27 प्रकृतियों की नियम से अल्पतर स्थिति भक्ति वाला होता है। किंतु इतनी विशेषता है, इसके अनंतानुबंधी चतुष्क का अभाव भी होता है, यानी नहीं है ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि विसंयोजना वाला जो शायद लेंगे तो मिथ्यात्व नहीं रहेगा, हमें मिथ्यात्व के अल्पतर के साथ घटित करना है। तो मिथ्यात्व के अल्पतर तो पूरे लाइफ टाइम तक चलेगी उनकी, और अनंतानुबंधी की विसंयोजना जिसने कर दी है तो उसके अनंतानुबंधी का सत्व ही नहीं है। हो सकता है कि पूर्व भव में विसंयोजना करके आया है, हो सकता है यहाँ कर आके किए। सम्यक्त्व की जो अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, अभी इसमें जो सम्यक्त्व की अल्पतर रेगुलर जो सम्यक दृष्टि है वहां पर औपशमिक हो फिर वेदक हो जाएगा तो वहां का तो अल्पतर अन्य की भी चलेगी उसके, या सम्यक्त्व की भी अल्पतर होगी। परंतु ऐसा भी हो सकता है ना कि जिसके सम्यक्त्व की अल्पतर है वो कृतकृत्य वेदक के भी हो सकता है, तो उसके अनंतानुबंधी चार मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इनका सत्व ही नहीं होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है, उसका सत्व होगा भी नहीं भी होगा, होगा ही नहीं अन्यथा जो रेगुलर सम्यक दृष्टि है, परंतु कृतकृत्य वेदक के साथ वहां उत्पन्न हुआ है उसके सम्यक्त्व तो है परंतु वो छह प्रकृतियां नहीं है। और कदाचित है, यदि है तो उनकी अपेक्षा नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, यानी उनका तो अल्पतर वाला ही चलेगा, तथा 12 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, क्योंकि वहां सभी प्रकृतियों के अल्पतर ही होती रहती है। जो सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है उसके मिथ्यात्व के समान भंग है, यानी उसके अन्य सभी के अल्पतर होगी, इसके अनंतानुबंधी के सत्व होगा कि नहीं होगा। हाँ, होगा भी नहीं भी होगा, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व है उसका तो अल्पतर चल रहा है, सम्यक दृष्टि है और वहां पर विसंयोजना कर दी अनंतानुबंधी के, तो उसकी सत्ता नहीं भी होगी। अनंतानुबंधी का अवक्तव्य होगा कि नहीं होगा, नहीं, वहां तो सम्यक दृष्टि है सब, मिथ्यात्व में आने का सवाल नहीं है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा जाननी चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि एक प्रकृति के रहते हुए शेष 3 नियम से है। विसंयोजना होती तो चारों की होती है, जहां एक है वहां अन्य भी है ही। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की जो अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है उसके मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है, क्यों क्षायिक समय दृष्टि यहाँ आएगा तो अप्रत्याख्यानावरण की तो अल्पतर चलेगी परंतु उसके इन 7 की सत्ता ही नहीं है। और यदि है तो उनकी अपेक्षा नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, वहां अल्पतर होता है ये तो कुछ सभी में होता ही रहता है, तथा 11 कषाय। 11 क्यों लिया? अप्रत्याख्यान और क्रोध के साथ लगाना है, तो अन्य 3 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान और 4 संज्वलन। 11 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, इसी प्रकार 11 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा जानना चाहिए, यानी यहाँ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध पर घटित किया, ऐसा ही सन्निकर्ष मान पर माया पर वो प्रत्याख्यानावरण संज्वलन हर एक के ऊपर लगाना। आहारक कायोगी, आहारक मिश्र कायोगी, आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, संहिता संयत, अवधि दर्शनी सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के अनुदिश के समान भंग है। किंतु इतनी विशेषता है कि विशेष जानकर कहना चाहिए। विशेष जानकर यानी अभी आहारक आहारक मिश्र है, उसके काल में क्षपणा का कार्य नहीं होगा, तो जानकर कहना चाहिए, मैं इसे समझना उसको। आगे अपगत वेदियों में जो मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, अपगत वेदी में मिथ्यात्व की सत्ता वाला है, वो कौन सा जीव है? उपशम श्रेणी वाला। और वहां तो अल्पतर ही होगी, वह सम्यक्त्व सम्यक द्वितीय उपशम, उपशम श्रेणी वाला द्वितीय उपशम, बराबर। वह सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व बारह कषाय और नौ नौ कषाय की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, उसके अनंतानुबंधी चतुष्क नहीं है, इसलिए यहाँ बारह कषाय लिए, नौ नौ कषाय और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व लिए। इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा जानना चाहिए, क्योंकि जहाँ मिथ्यात्व की सत्ता है वहां इन दोनों की भी है, द्वितीय उपशम वाला उपशम श्रेणी वाला लिया है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की जो अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, उसके मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व कदाचित है। अनंतानुबंधी को ऐसे भी छोड़ ही दिया है, क्योंकि अपगत वेदियों में वो होता ही नहीं है, क्योंकि उसके विषय योजना वाला ही चढ़ता है। अब क्या कहते हैं, तो अनंतानुबंधी की फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी, 24 में से इनकी सत्ता कदाचित है कदाचित नहीं है, शायिक सम्य दृष्टि के नहीं है। यदि है, उनकी अपेक्षा नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, तो उनकी भी अल्पतर स्थिति विभक्ति ही चलेगी, तथा 11 कषाय और 9 9 कषायों की अपेक्षा नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है। इसी प्रकार 11 कषाय और 9 9 कषायों की अपेक्षा जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि 4 संज्वलन और 7 9 कषायों का सन्निकर्ष विशेष जानना चाहिए। क्यों? अपगत वेद में 4 कषाय और 7 नौ कषाय शपक श्रेणी में भी हो गए, तो उनका जहां अल्पतर चल रहा है वहां अन्य प्रकृतियां होगी भी नहीं भी होगी, और जो है उनका अल्पतर चलेगा, वहां अल्पतर के अलावा अन्य कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना ही कथन है कि जो अन्य प्रकृतियां होगी और किसी के नहीं होगी, यानी ये दोनों श्रेणियों में घटित होता है। अभी यहां 7 नौ कषाय लिए, बराबर है ना, कल वो 8 के 7 के कंफ्यूजन चल रहा था, हाँ यहाँ बराबर लिखा है, ये तो मूल में है, वहां तो विशेषार्थ में घोटाला हुआ था। ये अपगत वेदियों में मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति जो है ना, द्वितीय उपशम उपशम श्रेणी, क्या हमने करेक्शन किया ना? कल ये जो 7 और 8 की बात आई थी, हाँ मैं बताती हूँ, हम करेक्शन जो किया था पेज नंबर 82 पर, वहाँ हम लिख सकते यहाँ देखने के लिए क्या, सात नौ कषाय, हाँ देखो 82 पेज पर विशेषार्थ में चौथी लाइन में, नहीं 7 करने पर भी, ये सारा ही कंफ्यूजन था वहां पर, क्योंकि वहाँ उन्होंने क्या लिखा था, देखो विशेषार्थ निकालो 82 पेज का। वहाँ आठ नौकशाओं का अंतरकाल क्षपक श्रेणी में भी बन जाता है, पर यह यथासंभव नपुसक वेद और स्त्री वेद की अपेक्षा क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए अवगत वेदी जीवों के ही प्राप्त होता है। वहाँ तो सात चाहिए था। हाँ और क्षपक श्रेणी में तो ये बात आठ की घटी थी नहीं होती है, क्योंकि उसके उसमें हमने ऐसा देखा था वहां पर अपगत वेद अवस्था में क्षपक श्रेणी में कोई स्त्री वेद पुरुष वेद सहित चढ़ता है तो उसके सात नौकशाएं है बाकी है चार संयोलन के साथ, और जो पुरुष वेद सहित चढ़ता है वो जब अपगत वेदी होता है तो उसके एक पुरुष वेद और चार संयोलन बाकी है, पांच ही बाकी, इसलिए वहां का वो आठ वाला घटित नहीं होता था। इसके लिए रेफरेंस ये 94 वाला लिख सकते हैं। अब यहां आते हैं 94 पर, पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, अकषायी सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयतों के अपगत वेदियों के समान भंग है, वो अवगत का अपगत करना। क्षायिक सम्यक दृष्टियों में, सम्यक्तों की मार्गणा में क्षायिक सम्यक दृष्टियों में वहां तो सात की सत्ता ही नहीं है तो उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है वह 11 कषाय और 9 नौकषायों की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है। इसी प्रकार 11 कषाय और 9 नौकषायों की अपेक्षा जानना चाहिए। देखो आठ कषायों की एक साथ क्षपणा होती है तो जहां आठ का अल्पतर चल रहा है आठों का तो वहां तो संज्वलन और नौ नौकषायों का भी अल्पतर चलेगा, परंतु जहां संज्वलन का अल्पतर है वहां पर ये आठ कषाय होगे भी नहीं भी होगे, नौ कषाय भी होगे भी नहीं भी होगे, क्योंकि नौ कषायों की क्षपणा पहले पूरी होती है। आगे लिखा है परंतु चार संज्वलन और सात नौकषायों का सन्निकर्ष विशेष जानना चाहिए, विशेष जानना चाहिए नहीं, उनके जब अल्पतर चल रहा है तब उसमें इनकी सत्ता नहीं भी होगी क्योंकि इनका क्षय पहले हो चुका है। उपशम सम्यक दृष्टियों में जो मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है वह सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 नौकषायों की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है। अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व के काल में इसकी विसंयोजना होती है, हाँ ऐसा भी मत है एक, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ कदाचित है कदाचित नहीं है कहेंगे। हाँ द्वितीय उपशम में तो होता ही नहीं है परंतु प्रथम उपशम के काल में भी विसर्जना होती है ऐसा यही पर जयधोला में ही हमने पढ़ा था पहले। यदि है तो उनकी अपेक्षा नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है। इसी प्रकार सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा जानना चाहिए, यानी जो औषमिक सम्यक दृष्टि है उसके सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का भी अल्पतर ही होगा। औषमिक सम्यक तो इनका दोनों की सत्ता नहीं है ऐसा तो कभी नहीं बनेगा। हाँ अनंतानुबंधी क्रोध की जो अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है वह शेष 27 प्रकृतियों की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है क्योंकि औषमिक सम्यक दृष्टि है अनंतानुबंधी है तो उसका अल्पतर है, तो उसका अल्पतर है तो बाकी सभी का अल्पतर होगा ही वहां पर। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान माया और लोभ की अपेक्षा जानना चाहिए। अब उपशम सम्यक्त में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की जो अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 11 कषाय और 9 कषायों की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है।
ये तो तीन तो ऑप्शनल भी हो सकते हैं ना।
हाँ हाँ,
मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व ऑप्शनल भी हो सकते।
कैसे?
द्वितीय ऑप्शन में जो
द्वितीय ऑप्शन है तो उसमें शायिक कैसा होगा?
जो पहले शायिक करके आया है
वो उपशम श्रेणी होगी, उपशम चारित्र में घटित होगा। हम द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं। ख्याल आई ना बात? नहीं समझे? उपशम श्रेणी कौन चढ़ता है? द्वितीय उपशम वाला भी चढ़ेगा, शायिक वाला भी चढ़ेगा। परंतु यहाँ किसकी बात चल रही है? औपशमिक सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, उपशम श्रेणी की नहीं चल रही। नहीं, अच्छा है, पूछ लो तो कंफ्यूजन दूर होगा ना। हाँ। अनंत अनुबंधी चतुष्क कदाचित है और कदाचित नहीं, यहाँ पर ये विसंयोजना हो वाला लेना। यदि है तो इनकी अपेक्षा नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है। इसी प्रकार 11 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा जानना चाहिए। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, उनमें भी सारे अल्पतर ही होते हैं। तो सम्यक मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी होते हैं कि नहीं होते?
होगा कि नहीं भी होगा?
हाँ, होगा भी नहीं भी होगा, क्योंकि विषय योजना के बाद भी कोई सम्यक मिथ्यात्व में आ सकता है, तो उसके नहीं होगी सत्ता। सासादन सम्यक दृष्टि जीवों में जो मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है वह शेष 27 प्रकृतियों की नियम से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाला है, क्योंकि सासादन में आने वाला कहाँ से आता है? औपशमिक सम्यक्त्व में से आता है, और आता है तो उसकी अनंतानुबंधी है, तभी तो वो यानी हो ही जाता है उसी समय। तो उसके तो 28 की सत्ता है ही है, और सबकी अल्पतर ही चलेगी। इसी प्रकार शेष 27 प्रकृतियों की अपेक्षा अलग अलग सन्निकर्ष करना चाहिए। सासादन में किसी भी प्रकृति के साथ अन्य 27 लगाओ, सभी अल्पतर होंगे। अभव्यों में 26 प्रकृतियों का भंग असंगियों के समान है। तो अभव्य में जैसा भी मिथ्यात्व का है, तो मिथ्यात्व में भी भुजगार अवस्थित अल्पतर सब हो सकेंगे, और बाकी सभी में भी होंगे। 26 की बात है वहां पर। इस प्रकार सन्निकर्षानुगम समाप्त हुआ। अप्पा बहुअम, अब अल्प बहुत्व अनुगम का अधिकार है, यह सूत्र सुगम है। अल्प बहुत्व किस में लगाना है? मिथ्यात्व की तीन टाइप की अभी स्थितियां हो सकती है, भुजगार भी हो सकती है, अल्पतर भी, अवस्थित भी, उसमें अल्प बहुत्व चलेगा। मिच्छत्तस्य सवत्थो वा भुजगार ठिदि विहत्या, मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। पहले हमने भागा भाग भी देखा था, भागा भाग में सब जीवों के कितने भाग है ऐसा देखा था। अब यहाँ अल्प बहुत्व ने सबसे अल्प कौन है, उससे ज्यादा कौन है, उससे ज्यादा कौन है, हमने प्रमाण भी देखा था, पहले भागा भाग भी देखा था, प्रमाण भी देखा था। देखो, मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं, क्योंकि अर्धाक्षय और संक्लेशय के केवल 2 समयों में जितने जीवों का संचय होता है उतने जीव ही मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति वाले यहाँ पर ग्रहण किए हैं।
तो
यहाँ पर लिखने का क्या जरूरत है?
4 समय
अन्यथा घटित होते हैं, परंतु ऐसे जीव तो अल्प हो गए। यहाँ मेजोरिटी किन की होगी? ये 2 समयों की। ये 2 समय तो किसी भी जीव में पंचेंद्रिय तक कहीं भी घटित हो सकता है। अध्याक्षय, ये अध्याक्षय और संक्लेशय पता है मंजूबेन? हाँ, काल, किसका काल? देखो, स्थिति बंध मिथ्यात्व का नहीं, स्थिति बंध उतना का उतना सतत होता रहे तो उसके लिए लिमिट है, उतना का उतना स्थिति बंध अंतर्मूर्त तक ही होता है, फिर उस अंतर्मूर्त काल का क्षय हो गया, अब अन्य स्थिति बंधेगी तो उसको कहेंगे अध्याक्षय। अब कहते कोई एक विशिष्ट परिणाम चल रहा है तो वो परिणाम चेंज हो गया, परिणाम चेंज होने से स्थिति चेंज होगी ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थिति बंधा अध्यवसाय स्थान तो बहुत सारे उतनी स्थिति बांध सकते हैं, परंतु ऐसा परिणाम चेंज हो कि अन्य स्थिति बांधने लगा तो उसको संक्लिक्षय कहेंगे। ये दो ही कारण है, अधिक बंधी ने पहले से अधिक बंधी स्थिति तो भुजगार के, ये दो ही कारण है। परंतु हमने ओघ में चार समय भी घटित किए थे, कैसे, एकेंद्रिय में से वो पंचेंद्रिय में आया है, तो पहले अध्याक्षय के एक समय, संक्लिक्षय से एक समय, दो समय तक भुजगार हुआ, फिर विग्रह करके संगी में आया है, तो एक समय के लिए असंगी पंचेंद्रिय जैसा बंद हुआ, और फिर मिश्र अवस्था शुरू हुई तो संगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त जैसा बंद होने लगा। तो ये चार समय लगातार भुजगार हो सकता है किसी का, परंतु ये दो समय तो सभी में घटित होते हैं। तो यहाँ दो, यहाँ पर लिखा ना, यहाँ पर दो समयों की विवक्षा है। यद्यपि एकेंद्रियों में से लिखा ही आगे, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रियों में उत्पन्न होकर भुजगार स्थिति विभक्ति को करने वाले जीव होते हैं, परंतु वे यहाँ पर अप्रधान हैं, क्योंकि वे जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। और भुजगार करने वाले कितने हो गए, दो समय वाले अनंत हो गए, और ये कितने हैं, जगत प्रतर का असंख्यात भाग, वो भी असंख्यात है। जगत प्रतर क्या होता है, हाँ, जगत श्रेणी किसको कहना, सात राजू को जगत श्रेणी कहते हैं। तो जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, सात राजू गुना सात राजू कितने होते हैं लक्ष्मी बहन, अरे सात गुना सात कितने हुए, 49। क्या उसका यूनिट बोलो, हाँ स्क्वेयर राजू, क्योंकि घर हमें घर गिनते बरोबर गिनते, 15x15 की रूम होगी तो हम कितना कहते हैं, स्क्वेयर लगाते आगे, हाँ तो स्क्वेयर के बदले यहाँ प्रतर कहना, प्रतर राजू कहेंगे, 49 प्रतर राजू, प्रतर यानी स्क्वेयर, श्रेणी गुणा श्रेणी तो प्रतर हो जाता है। देखो अंगुल गुणा अंगुल प्रतरांगुल होता है, और अंगुल गुणा अंगुल गुणा अंगुल घनांगुल होता है, ऐसे श्रेणी, अभी जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी जगत प्रतर हुआ, और जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी जगत घन होगा, उसी को लोक कहेंगे हम, तो ये प्रतर होगा। तो यहाँ उसकी संख्या कम है इसलिए उसकी अप्रधानता लिखी। अब कहते अवठिद ठिदि विहत्या असंख्येज्य गुणा, अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीव, असंख्यात गुणा चाहिए, असंख्यात वाले नहीं असंख्यात गुणा है, गुणकार का प्रमाण क्या है। देखो यहां ऊपर जो जगत प्रतर के असंख्यात हुए भाग प्रमाण कहा, परंतु टोटल भुजगार वाले कितने हो गए, अनंत, हमने देखे भुजगार वाले भी अनंत हो गए, अवस्थित वाले भी अनंत, और अल्पतर वाले भी अनंत हो गए। उनमें से अल्प सबसे कम संख्या कौन सी है, भुजगार वालों की, और उनसे अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जी उनसे असंख्यात गुणे हैं, वो अनंत जो देखा उनसे असंख्यात गुणे हो गए। और गुणकार का प्रमाण क्या है, संख्यात आवली प्रमाण अंतर्मूर्त गुणकार का प्रमाण है। ये ऐसा क्यों लिखा, ये गुणकार कैसे निकाल सकते हैं, लगातार अवस्थित होता रहे, जितना बंद हुआ उतना ही हुआ दूसरे समय में भी, तो हो सकता है कि दो समय तक हो जाए, और मैक्सिमम किसी का चलता रहे तो अंतर्मूर्त होता है। अंतर्मूर्त को ही आवली में बताना है तो क्या कहेंगे, संख्यात आवली, संख्यात आवली का अंतर्मूर्त होता है। देखो मिनिमम अंतर्मूर्त कितना है, आवली प्लस एक समय, और मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त कितना है, 48 मिनट में एक समय कम, उसमें भी आवली कितनी हो जाएगी, संख्यात हो जाएगी। तो अंतर्मुहूर्त के लिए संख्यात आवली कहते हैं। यही यहाँ वही बात लिखी है, एक जीव के लिए अंतर्मुहूर्त है ना, और इतने भुजगार करने वाले जितने जीव है, अभी नाना जीवों की अपेक्षा लेना है, एक जीव ने भुजगार किया, अन्य किसी जीव ने भुजगार किया, और अन्य किसी जीव ने भुजगार किया, भुजगार के बाद अवस्थित किया, तो अवस्थित लगातार कितने समय तक हो सकता है, अंतर्मुहूर्त। तो किसी का अवस्थित हुआ अन्य, और किसी का अवस्थित हुआ अन्य, तो वो जीव कितने होते हैं अवस्थित करने वाले। तो जो भुजगार करने वालों का प्रमाण है उसको अंतर्मुहूर्त से गुणा करना है, उतनी जीव होगी ना अवस्थित वाले। इसलिए कहते गुणकार का प्रमाण क्या है, संख्या तावली प्रमाण अंतर्मुहूर्त गुणकार का प्रमाण है, क्योंकि एक स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। यदि कहा जाए कि एक स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल बहुत संभव नहीं है, अतः संख्यात समय मात्र स्थितिबंध काल लेना चाहिए, सो भी कहना युक्त नहीं है। यानी संख्यात समय ही उसको ले लो तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्थितिबंध के मूल और अग्र काल को जोड़कर और आधा करके स्थितिबंध के मध्यम काल के ग्रहण करने पर भी अवस्थित स्थितिबंध काल संख्यात आवली प्रमाण प्राप्त होता है। ये मूल क्या होता है और अग्र क्या होता है, इनको कहना है। स्थितिबंध जो मिनिमम है कितना होता है, एक समय के लिए होता है ना, अवस्थित नहीं भी होगा एक समय के लिए, भुजगार हुआ फिर अल्पतर हो जाएगा, या हो सकता है कि एक समय के लिए अवस्थित हुआ, दूसरे समय में वो भुजगार या अल्पतर हुआ। यानी अवस्थित का मिनिमम काल कितना होगा, एक समय, और मैक्सिमम काल जो कोई अंतर्मूर्त यथा योग्य होगा। अब मूल और अग्र का अर्थ क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो हमें एवरेज निकालना है, तो क्या करते हैं, हम किसी भी चीज के एवरेज निकालते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम को प्लस करते हैं और उसका आधा करते हैं। यहां वही बात कह रहे कि स्थितिबंध के मूल और अग्र काल को जोड़कर, यानी मिनिमम और मैक्सिमम काल को जोड़कर और आधा करके स्थितिबंध के मध्यम काल के ग्रहण करने पर, यानी सभी जीवों के जो एवरेज अगर निकालेंगे, मराठी में उसको सरासरी कहते ना,
गुजराती में भी सरासरी,
सरासरी कहते, हाँ गुजराती में भी है, अच्छा, वह भी काल कितना होगा, वो भी अंतर्मुहूर्त होगा, संख्या तावली प्रमाण करने पर भी अवस्थित स्थितिबंध काल संख्या तावली प्रमाण प्राप्त होता है। अब यहाँ अवस्थित जीवों का प्रमाण लाने की विधि कहते हैं, वह इस प्रकार है। एक समय में यदि एक समय द्वारा संचित हुई भुजगार स्थितिबंध रूप अनंत जीव राशि प्राप्त होती है, तो अवस्थित काल में कितनी प्राप्त होगी, इस प्रकार क्या कहना चाहते हैं, भुजगार से ये कितना ज्यादा है ये निकालना है। तो एक समय में भुजगार वाली जितनी है, एक समय में जितनी प्राप्त होगी, अब उनसे ये जीव कितने ज्यादा हो जाएंगे, जो अंतर्मूर्त काल है उससे गुणा करेंगे उसको हम, तो अवस्थित काल में कितनी प्राप्त होगी, इस प्रकार इच्छा राशि से फल राशि को गुणित करके और उसमें प्रमाण राशि का भाग देने पर अवस्थित स्थिति भक्ति वाली जीव राशि प्राप्त होती है। अतः यह राशि भुजगार स्थिति भक्ति वाली जीव राशि से असंख्यात गुणी है, यह सिद्ध हुआ। अंतर्मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं और ये भुजगार, वो हमने देखे थे वहां की जो जीव राशि है उनसे ये असंख्यात गुणा हो जाते हैं, इसलिए गुणकार का प्रमाण जो है वो असंख्यात का। अपदर ठिदी विहत्या संख्य जगुणा, ये तीनों ही राशि है तो अनंत, परंतु भुजगार वाली जो है उससे अवस्थित वाली असंख्यात गुणी, और अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव संख्यात गुणे हैं, उनसे संख्यात गुणे। अल्पतर वालों सॉरी ऊपर कौन से देखे थे हमने, अवस्थित वालों से संख्यात गुणे हैं। अनंत गुणा ने वो अल्प में मिनिमम पॉसिबल हमने भुजगार ली, उनका प्रमाण अनंत है, अनंत गुणा नहीं, अनंत जीव है, तीनों में अनंत है, परंतु पहली भुजगार राशि जो है उसमें जो अनंत है सबसे थोड़े हैं। हाँ, भुजगार के अनंत है, उससे असंख्यात गुणा हो गए अवस्थित, अवस्थित उससे संख्यात गुणा अल्पतर। नहीं पहले को अनंत मत गिनो,
नहीं नहीं उनका कहना बराबर है, पहले जो भुजागर वाला अनंत जीव लिए
कितने है कितने, और आगे वाली संख्या कितने गुणा है कहते हैं, तीनों को एक समान नहीं, अनंत कहो फिर असंख्यात मत कहो, असंख्यात गुणा कहो और संख्यात गुणा कहो, वो गुणकार करके वो भी अनंत हो जाएगी। अल्पतर वाला ही होगा, परंतु हमें तीन लिखना है तो अनंत असंख्यात संख्यात ऐसा नहीं कहना, अनंत कहते हैं तो असंख्यात गुणा अनंत कहो और संख्यात गुणा अनंत कहो।
So, उनका कहना है अनंत गुणा असंख्यात
गुणा संख्यात। हाँ, मूल राशि अनंत गुणा असंख्यात गुणा संख्यात, तो ये अल्पतर वाली राशि आ जाएगी। मल्टीप्लीकेशन में बीच में डाला, हाँ
उन्होंने मल्टीप्लिकेशन की साइन
लिखा है मगर कहा नहीं। तो अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि
ये जो बताया ना प्रमाण, वो जो किस्सा एक समय में भुजागार के एक समय में अनंत जीव है, तो वो कैसे, वो जो त्रिराशि लगाई ना वो कैसे लगाई,
एक समय में कितने भुजागार के हो सकते हैं,
अनंत
अनंत होते हैं। अभी अवस्थित वाले कंटिन्यूस उतने के उतने रहे, जो भुजगार हुए थे
वो इतने
अवस्थित रहे।
अच्छा, वो इतना काल ले लिया।
हाँ,
काल का
वो कितने काल तक वो अवस्थित रहे, तो लगातार उतना ही बंद होने का काल लिया।
तो इसे तो अल्पतर करके वो भी अवस्थित वाले हो सकते हैं,
अल्पतर के बाद भी अवस्थित हो जाएंगे। हाँ अवस्थित हो गए, अवस्थित में और उसका संचित जीवन का प्रमाण है लगातार।
जो बुझागर क्या उसके संचित,
हाँ, संचित में लेना। हाँ,
और अल्पतर वाला भी अवस्थित करेंगे तो उसका प्रमाण यहाँ पे नहीं बताया।
अभी अवस्थित वाले अल्पतर करेंगे तो उनसे वे ज्यादा हो जाएंगे। देखो अवस्थित तो भुजगार लगातार कितने हो सकते हैं, समय दो
समय,
और अल्पतर लगातार
अंतर,
तो उनका प्रमाण उससे ज्यादा हो जाएगा। और अल्पतर वाले देखो, अल्पतर हमने एक केंद्रियों में देखे तो पहले के असंख्यात विभाग तक अल्पतर चलेंगे, या हाँ अल्पतर में भी है।
हाँ,
तो अवस्थित की ज्यादा हो
नहीं, भुजागर करेंगे वो भी अवस्थित कर सकते हैं, अल्पतर वाले भी अवस्थित कर सकते हैं।
ये शंका समान पूछेंगे, आचार्य पूछेंगे। देखो पहले इसको देखते हैं, अल्पतर स्थिति भक्ति वाले ये संख्यात गुण है, क्योंकि अल्पतर स्थिति बंध के काल से क्योंकि अवस्थित स्थिति बंध के काल से अल्पतर स्थिति बंध का काल संख्यात गुणा है।
नहीं की संख्या थोड़ा कैसे कहा?
अभी अभी करेंगे ना सारा एक्सप्लेनेशन, इसका क्या कारण है आगे इसे बताते हैं। उनको पता था आप क्या पूछने वाला हूँ। एक स्थिति के योग्य स्थिति बंध अध्यवसान स्थानों में ही क्या कहते हैं, जो अलग अलग स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है उतनी ही स्थिति बांधने वाले अलग अलग परिणाम, उसको क्या कहा? एक स्थिति के योग्य स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों में ही अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव परिणमन करते रहते हैं। अवस्थित कब होगा? परिणामों की तो वेरिएशन होगी, क्योंकि एक ही परिणाम लंबे काल तक नहीं चलता। हमने कल देखा कुछ चार समय वगैरह ऐसी बात की, तो उतनी ही स्थिति बंध कारण वो जो परिणाम है उनमें वो जीव वो चेंजेस हो रहे हैं, उसके स्थिति उतनी ही बंध रही है। एक विशिष्ट स्थिति बंध के लिए कारणभूत परिणाम कितने हो सकते हैं? असंख्यात लोक, बहुत बड़ा प्रमाण है। तो उन परिणामों में वेरिएशन होती है, फिर भी स्थिति बंध उतना का उतना है, तो उसके लिए भी अंतर्मूर्ति ही हो सकता है, ज्यादा नहीं। इसको कहेंगे अवस्थित स्थिति बंध के लिए ये परिणामों के वेरिएशन हो रहे हैं, अन्यथा स्थिति बंध के अवस्थित होने में विरोध आता है। परंतु अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव उससे नीचे की सभी स्थितियों के योग्य स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों में परिणमन करते रहते हैं। क्या कहा? विशिष्ट स्थितिबंध के लिए तो वो परिणामों में जो कोई उतने रेंज में ही परिणाम चेंज होते रहेंगे। अब उससे एक समय कम स्थिति, दो समय कम स्थिति, तीन समय कम स्थिति, स्थिति के जितने नीचे के भेद है उनमें उतने परिणामों में भी भेद हो सकते हैं। यानी कम स्थिति कम स्थिति कम स्थिति लगातार बन सकती है। अतः अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों से संख्यात गुणे होते हैं। अब इस पर शंका फिर चलेगी। यदि अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव एक स्थिति के योग्य स्थितिबंध अध्यवसान स्थान में ही रहते हैं, तो नीचे के असंख्यात स्थितियों के योग्य स्थितिबंध अध्यवसान स्थानों में परिणमन करने वाले अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों से असंख्यात गुणे क्यों नहीं होते? क्योंकि स्थितियों के तो इतने वेरिएशन से, असंख्यात वेरिएशन से, तो उनमें असंख्यात गुणे कहो। शंका ख्याल में आई? उसका समाधान नहीं, क्योंकि जीव संख्यात बार अल्पतर बंध को करके एक बार अवस्थित स्थिति बंध को करता है। यानी लगातार अल्पतर 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 संख्यात बार होने पर एक बार अवस्थित हो जाता है। अतः अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों से अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे नहीं होते। फिर शंका, संभव होते हुए जीव असंख्यात बार अल्पतर स्थिति सत्कर्म को क्यों नहीं करता है? ऐसा स्वभाव है, और स्वभाव दूसरे के द्वारा प्रतिबोध करने के योग्य नहीं होता। ये कितनी बार लिखा ना उन्होंने, अन्यथा अव्यवस्था प्राप्त होती है। यानी स्वभाव है वैसा ही, उसको जानो, उसमें क्यों नहीं लगता। अभी इसको फिर बताते हैं। एक स्थिति का विशिष्ट जो स्थिति जितनी समय की बंदी है, जितना सर्वोत्कृष्ट बंध काल है, स्थिति बंध का काल उतनी की उतनी स्थिति लगातार बंधने का काल, उससे संख्यात गुणे काल तक स्थिति सत्व से नीचे भुजगार अल्पतर और अवस्थित रूप से स्थितियों का बंध करता हुआ यह जीव सर्वोत्कृष्ट बंध का लिया ना, एक स्थिति का जितना सर्वोत्कृष्ट बंध काल है यानी जो उसका अंतर्मूर्त होगा यथा योग्य, उससे संख्यात गुणे काल तक स्थिति सत्व से नीचे बुझगार अल्पतर और अवस्थित रूप से स्थितियों का बंध करता हुआ यह जीव अधस्थिति गलना के द्वारा सत्कर्म को अल्पतर करके पुनः उसे अवस्थित करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है।
स्थिति सत्व के नीचे भुजगार करेगा तो भी उसका अल्पतर ही होगा, क्योंकि वहाँ पे नीचे वाला जो बंद करता है ज्यादा,
नीचे का जो बंद है
पर सत्ता ज्यादा रहती है, ऐसा ही कहना है ना उसका उनका।
परंतु पहले अल्पतर बाद में स्थिति भुजगार लिखना था, क्योंकि स्थिति सत्व से नीचे भुजगार कहते ही नहीं ना, जो नीचे होगा तो उसको अल्पतर ही कहेंगे। परंतु अल्पतर होने के बाद फिर भुजगार हो सकता है, परंतु वो मूल से कम ही हुआ है। जबकि काल संख्यात गुणा है तो भी जीव भी संख्यात गुण ही होते हैं, क्योंकि अवस्थित और अल्पतर भाव को प्रत्येक समय में प्राप्त होने वाले जीव समान है। हाँ यही बात है ना, अवस्थित के अंतर्मूर्त से अल्पतर का अंतर्मूर्त संख्यात गुणा है, इसलिए ये बात घटित होती है। शंका, अल्पतर और अवस्थित विभक्तियां सर्वदा पाई जाती है, अतः अनंत काल में होने वाला संचय क्यों नहीं लिया जाता? समाधान, नहीं, क्योंकि अल्पतर और अवस्थित पद को प्राप्त हुआ एक जीव जब तक अविवक्षित पद को नहीं प्राप्त होता है, उतने काल में होने वाले संचय का ही यहाँ ग्रहण किया है। नाना जी उनकी अपेक्षा सदाकाल भले हो तो यहाँ कहते तो अनंत काल क्यों नहीं लिया, परंतु विशिष्ट जीव अल्पतर के बाद अन्य स्थिति को प्राप्त होगा, उसके लिए कितना समय लगता है, उसका काल यहाँ लिया है।
ऐसे तो हमने भुजागर भी सर्वदा पाया जाता है ना?
नाना जीवों की अपेक्षा सर्वदा, परंतु एक जीव की अपेक्षा दो समय, तीन समय, चार समय घटित किए थे उन्होंने, एक जीव की अपेक्षा।
पर यहाँ पे तो सब नाना जीव की अपेक्षा ही बात है।
नाना जीव की अपेक्षा, परंतु हमें अब संचय अगर लेना है।
अच्छा, काल की अपेक्षा।
एक समय में जीव कितने, तो अनंत है। अब अवस्थित वाले लगातार अंतर्मूर्त तक करते तो वहाँ एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त है ना, तो फिर जो संख्या आई थी अनंत उसको अंतर्मूर्त से गुणा किया था
और उससे वो अंतर्मूर्त ज्यादा।
अब ये जो अल्पतर वाले है वो अंतर्मूर्त बड़ा है, संख्यात गुणा है, इसलिए उसको और संख्यात से गुणा किया। देखो फिर समाधान पढ़ते हैं। शंका पूछी थी कि अल्पतर और अवस्थित तो हमेशा ही पाए जाते हैं, तो अनंत काल में कितना संचय हो गया उसको बताओ, तो कहते ऐसा नहीं चले। क्यों? क्योंकि अल्पतर और अवस्थित पद को प्राप्त हुआ एक जीव जब तक अविवक्षित पद को नहीं प्राप्त होता है, जब अल्पतर है हमारी विवक्षित पद है उसके लिए भुजगार और अवस्थित अविवक्षित हो जाएगा। जब हम अवस्थित को विवक्षित कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो अवस्थित होते होते बीच में भुजगार हो जाए और अल्पतर हो जाए, उसको हम अविवक्षित कहेंगे। तो जब तक वो उस पद को प्राप्त नहीं होता, उतने काल में होने वाले संचय का ही यहाँ ग्रहण किया है। और एक जीव उत्कृष्ट रूप से अंतर्मूर्त काल को छोड़कर अनंत काल तक अल्पतर और अवस्थित पद को करता हुआ नहीं पाया जाता, उसका तो अंतर्मूर्त ही है, अन्यथा एक स्थिति के परिणाम अनंत हो जाएंगे। उतनी की उतनी स्थिति अनंत काल तक बांधेंगे तो कितने परिणाम होंगे, क्योंकि परिणामों में तो वेरिएशन होती ही होती है। तो यहाँ कहते हैं एक स्थिति के परिणाम अनंत हो जाएंगे, परंतु एक स्थिति के परिणाम कितने हैं? असंख्यात ही है। शंका, फिर शंकाकार थोड़े छोड़ने वाला है। तो कहते एक स्थिति के योग्य स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों का जितना प्रमाण है, अवस्थित स्थितिबंध काल उतना क्यों नहीं होता? कितना प्रमाण है उसका? असंख्यात लोग, तो उतना काल बता दो। नहीं, क्योंकि एक जीव के एक स्थिति के योग्य स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों में परिणमन करने का जघन्य काल एक समय मात्र और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है, ऐसा परम गुरु का उपदेश है, भगवान का उपदेश है। एक ही विशिष्ट स्थितिबंध के कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, फिर भी उनमें जो रेंज है उसमें जो परिभ्रमण करेगा ऊपर नीचे जो कोई परिणामों में, अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं उसमें टिक सकता, उससे फिर वो अन्य स्थिति बंध के योग्य परिणाम हो ही जाएंगे, उसके वही के वही स्थिति बंधने के योग्य परिणाम नहीं रहेंगे। एवं बारस कसाय नवनो कसायाणम, इसी प्रकार बारह कषाय और नौ नौ कषायों का अल्प बहुत्व जानना चाहिए। अभी हमने मिथ्यात्व के बुजगार के जीव सबसे थोड़े हैं, अवस्थित असंख्यात गुणे हैं और अल्पतर उससे संख्यात गुणे, ऐसा ही बारह कषाय और नौ नौ कषायों का अल्प बहुत्व।
सोलह कषाय नहीं लिया?
हाँ, सोलह कषाय नहीं लिया।
तो ये
उसमें तो चार पद भी होते हैं।
ये बारह कषाय में अनंत अनुबंधी को छोड़ना ना?
हाँ, इसी प्रकार बारह कषाय नौ नौ कषायों का अल्पभूत्व जानना चाहिए। जिस प्रकार मिथ्यात्व का अल्पभूत्व कहा है, उसी प्रकार बारह कषाय और नौ नौ कषायों का कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। सम्मत सम्मा मिच्छत्तानम सौवत्थोवा अवट्ठिदठिदि विहत्या, सम्यक असम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। हमने देखा था अवस्थित कब होता है?
अंगुल के असंख्यात के
पास सम्यक के पहले समय में, और उसके लिए कंडीशन क्या है? मिथ्यात्व की स्थिति एक से ज्यादा चाहिए, तो उसको छोड़कर अन्य स्थितियां बहुत सारी है, उन स्थितियों के साथ अगर सम्यक तो प्राप्त होता है तो वो अवस्थित वाला नहीं बनेगा, बुजगार वाला बन जाएगा। देखो आगे लिखते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व की एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले जीवों के ही सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति संभव है। शंका, सम्यक्त्व की स्थिति सत्व से मिथ्यात्व की एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले जीव सबसे थोड़े हैं, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 24 दिन रात है, यह कहकर उन्हीं दोनों प्रकृतियों की अवस्थित स्थिति विभक्ति का अंतरकाल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा। वो अंतर आपको याद था ना? कोई नहीं करे तो उनकी संख्या तो बहुत अल्प होगी। इससे जाना जाता है कि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। भुजगार ठिदि विहत्या असंख्य जगुणा, भुजगार स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? आवली का असंख्यातवा भाग गुणकार है, क्योंकि सम्यक्त्व की एक स्थिति के रहते हुए उससे मिथ्यात्व की एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म के साथ ही सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले जीवों के अवस्थित स्थिति विभक्ति होती है, तथा दो समय अधिक आदि, आदि में दो समय अधिक, तीन समय अधिक, चार समय अधिक, शेष संपूर्ण स्थिति विकल्पों के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले जीवों के भुजगार स्थिति विभक्ति ही होती है।
ये एक समय, दो समय, उसमें 70 कोड़ा
कितने अधिक, हाँ कितने अधिक तक की वो बात है। परंतु मिथ्यात्व की, यानी यहाँ सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि मिथ्यात्व की तो अंत कोड़ा कोड़ी से कम नहीं होगी। नहीं समझे? देखो उजगार देखना है। हाँ। तो कोई ऐसा जीव ले सकते हैं कि उद्वेलना करते 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 उसने बहुत कम कर दी स्थिति। हाँ। दो ही स्थितियां बाकी रही। हाँ। उसकी ये चार स्थितियां मान लेते हैं, तो ऐसा होगा कि मिथ्यात्व की तो 5 समय की है और इसकी 4 समय की। तो मिथ्यात्व में कितना भी स्थिति कांड घात क्यों न हो, उसकी तो अंत कोड़ा कोड़ी से नीचे नहीं जा सकती है। हमने प्रथम ऑप्शन सम्यक्त के लिए देखा था कंडीशन, कोई 1000 सागर वाली स्थिति वाला हो, उसको सम्यक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता।
1000 सागर वाला जीव?
हाँ, हाँ, असंगी वाला है।
नहीं, सम्यक्त में 1000 वाला होगा तो उसको होगा। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व में पृथक सागर वाले
वाले। हाँ ऐसा भी आप कह रहे हैं कि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व में पृथक तो सागर है, तो उसके तो ऑप्शन सम्यक्त तो हो सकता है, परंतु उसमें अवस्थित बन सकेगा?
नहीं,
क्योंकि मिथ्यात्व की इतनी कम एक समय अधिक वाली स्थिति वहाँ नहीं बन सकती है। तो मिथ्यात्व की मिनिमम जो ध्रुव स्थिति है उससे तो नीचे नहीं जा सकती। हो सकता है कि उसमें कम एक कम सम्यक्त की हो सकती है, उस समय उद्वेलना करते करते उस पॉइंट पर आया है वो। ख्याल में है ना बात?
यहाँ पे हम लोग सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्प से भुजागर कितनी हो सकती है, वहाँ पे विकल्प 2 से लेके,
हाँ अभी 2 से लेकर यानी अंतक कोड़ा, मिनिमम अंतक कोड़ा कोड़ी होगी। अंतक कोड़ा कोड़ी से लेकर अभी एक समय अधिक वाली छोड़ देना, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, 4 समय अधिक, कहाँ तक? फिर 70 कोड़ा कोड़ी तक जाओ। यानी कितने विकल्प हो गए? 70 कोड़ा कोड़ी माइनस वो अंतक कोड़ा कोड़ी। हाँ, वहां से वेदक समय तो प्राप्त करेगा। अवस्थित कब हो सकता है?
अवस्थित तो बहुत,
हाँ तो वहाँ 2 से लेकर अधिक से हम ले लिए ना, बीच में वेदक के ही हो गए, फिर बाद में औपशमिक भी उसमें ले सकते हैं हम। भुजगार तो औपशमिक में भी होता है।
भुजगार तो औपशमिक वाला ज्यादा हो
गया। तो यहाँ क्या कहते, देखो फिर यहाँ कहाँ गए, भुजगार स्थिति ऊपर सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? भुजगार स्थिति विहत्या असंख्यज गुणा, भुजगार स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? आवली का असंख्यात वा भाग गुणकार है, क्योंकि सम्यक्त्व की एक स्थिति के रहते हुए उससे मिथ्यात्व की एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म के साथ ही सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले जीवों के अवस्थित स्थिति विभक्ति होती है। मैंने सम्यक की विशिष्ट एक स्थितियां नहीं, वो एक निषेक नहीं समझना। हाँ। तथा 2 समय अधिक आदि शेष संपूर्ण स्थिति विकल्पों के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले जीवों के भुजगार स्थिति विभक्ति ही होती है। ये अधिक से अधिक कितना भी ले लो उसमें। इस प्रकार सम्यक की सब स्थितियों के आश्रय से भुजगार और अवस्थित स्थिति व्यक्तियों के विषय की प्ररूपणा करने पर भुजगार का विषय ही बहुत प्राप्त होता है। अवस्थित के लिए लिमिटेशन है, भुजगार के बहुत सारे विकल्प हैं। दूसरे, मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति के नीचे सम्यक्त्व की 2 समय कम आदि स्थिति सत्कर्म के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले जीवों के भुजगार स्थिति विभक्ति ही होती है। पहले में पहले क्या कहा, यह ऐसे उल्टी तरफ मिथ्यात्व को ध्रुव स्थिति से नीचे तो नहीं जा सकता, तो मिथ्यात्व की मिनिमम तो ध्रुव स्थिति है उतनी रह सके, उससे एक समय कम सम्यक्त की होगी तो अवस्थित होगा, और उससे दो समय कम, तीन समय कम, चार समय सम, अभी एक निषेक तक घटित करो जो हमने उपशमिक सम्यक्त में देखा था। ध्रुव स्थिति का अर्थ होता है मिनिमम पॉसिबल बंद, संगी पंचेंद्रियों में मिथ्यात्व की कितनी स्थिति कम से कम हो सकती है उसको ध्रुव स्थिति कहते हैं, उससे कम नहीं होगी। देखो जब प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करता है उससे काल में उसके मिनिमम बंद है, जो सत्ता में स्थित है उससे भी कम बंद हो रहा है, और उसके कारण वहां स्थिति कांड घात भी होते हैं, यानी मिनिमम कितना हो सकता है उसको ध्रुव स्थिति कही है। अब ऐसा जीव सम्यक तो प्राप्त करेगा तो ध्रुव स्थिति से मिथ्या तो कम नहीं होने वाला, उसकी जो अंत कोड़ा कोड़ी है ना उससे कम तो उसकी स्थिति नहीं होगी, उस उतनी रहेगी। पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व जो ऑलरेडी उद्वेलना करके आया है जी, तो वो ध्रुव स्थिति से एक समय कम होगा तो वो अवस्थित बनेगा, दो समय कम होगा तो भुजगार बनेगा, तीन समय कम, चार समय कम, पांच समय कम, कितना चले जाओ अंत कोड़ा कोड़ी से, दो समय कम से लेकर अभी अंत कोड़ा कोड़ी माने संत कोड़ा कोड़ी, यानी उसका एक समय वाली स्थिति भी बाकी रहे वो सबके लिए भुजगार कहलाएगा। ख्याल आई बात, यहाँ यहाँ बढ़ाओ जितनी सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की है उससे मिथ्यात्व की स्थिति दो समय अधिक, तीन समय अधिक, 70 कोड़ा कोड़ी तक ले जाओ, या ध्रुव स्थिति से दो समय के डिफरेंस से इसकी कम करो, मिनिमम एक समय तक की करो, ये सारे भुजगार के विकल्प हो गए, दोनों ओर लेना उसको, क्योंकि मिथ्यात्व को तो ध्रुव स्थिति से नीचे नहीं ला सकते। तो अवस्थित के लिए क्या चाहिए, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की जितनी उससे उसका एक समय ज्यादा चाहिए, वहां से लेकर ऊपर 70 कोड़ा कोड़ी तक ले लो,
पर 70 कोड़ा कोड़ी में जितना कांडक का प्रमाण है उतने ही विकल्प हो गए, क्योंकि कांडक होता है कभी जब भी उसका,
किसका कांडक, मिथ्यात्व के कांडक, वो बाद में ले लो ना, वो हमने ध्रुव स्थिति के नीचे देखे, उसको कांडक कितने भी हो गए तो ध्रुव स्थिति से नीचे नहीं चले जाएंगे। और यहाँ उल्टा लेना, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता कम थी उद्वेलना करते करते, कितनी कम थी, दो समय कम थी, तीन समय कम थी, एक ही निषेक था ऐसा ही हम कहेंगे ना, तो ये सारे विकल्प भुजगार के हो गए। अवस्थित के लिए लिमिटेशन, अतः लास्ट लाइन उसकी, अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों से भुजगार स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। अब कहते अवतव स्थिति विहत्या असंख्य गुणा, अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व सत्कर्म के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले मिथ्या दृष्टि जीवों से, सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व कर्म से रहित मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात गुणे हैं। क्या कहना चाहते हैं, सादी मिथ्या दृष्टि 28 की सत्ता वाले जो सम्यक्त को प्राप्त होते हैं, उनसे 26 की सत्ता वाले जो सम्यक्त को प्राप्त होते हैं वो असंख्यात गुणे हैं, वो सादी भी होते हैं अनादि भी होते। क्या कहते हैं, उनका कहना है वेदक सम्यक्त को प्राप्त होने वालों से
प्रथम अक्षम,
क्योंकि उसके सत्कर्म के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले, परंतु सत्कर्म के साथ होने वाले औपशमिक भी हो सकते हैं, क्योंकि सागर जितने उसकी स्थितियां हैं उसने जितने उसकी स्थितियां वो सारे उसमें ले लेना, फिर भी उनसे वो अवक्तव्य वाले असंख्यात गुण है। यानी औपशमिक में से और संख्या घट गई ना उसकी। शंका, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के स्थिति सत्कर्म की उद्वेलना किए बिना बहुत जीव सम्यक्त्व को क्यों नहीं प्राप्त होते, यानी उनकी संख्या ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि जिनकी उद्वेलना चल रही है ऐसे जीव तो बहुत सारे ज्यादा हो गए जो प्राप्त करने वाले, उनसे बिना सत्व वाले ज्यादा क्यों कहते हो, ये प्रश्न है। नहीं, क्योंकि उद्वेलना रूप क्रिया के प्रारंभ हो जाने पर उस क्रिया को छोड़कर और विशुद्धि को प्राप्त होकर अधप प्रवृत्तादि रूप दूसरी क्रियाओं को प्राप्त होने वाले बहुत जीवों का होना असंभव है। क्योंकि जैसे खलवाट पुरुष के सिर पर, खलवाट है ने को मेरे के बाल्ड,
अच्छा
बाल्ड ही होगा ना उसका अर्थ। हाँ, ये क्या कहते, खलवाट पुरुष के सिर पर बेल का गिरना कदाचित समय, बेल नाम का जो फल है कड़क होता है बाहर से, देखा है कभी? नहीं देखा, बेल का फल का नहीं देखा, एक कवर देखा होगा वैसा बेल का फल दिखता है, कड़क है वो, कठिन, उसका कवच बहुत हार्ड होता है। हाँ, जैसे खलवाट पुरुष के सिर पर बेल का गिरना कदाचित संभव है, उसी तरह एक क्रिया के करते हुए दूसरी क्रिया क्वचित ही होती है, वो क्व करना क्वचित ही होती है। देखो पहले भी ये क्रिया को करने वाला ऐसा शब्द आया था, ये कौन सी क्रिया चल रही है, उद्वेलना रूप क्रिया, ये एक क्रिया है, और अधप प्रवृत्त रूप क्रिया दूसरी क्रिया है। तो उद्वेलना को करते करते अधप प्रवृत्त आदि शुरू करना विशुद्धि के द्वारा, ये रेयर है कहते हैं। नहीं नहीं, खलवाट यानी टकला, रेयर गोष्ट क्या है, कोई वो जिसको कहते हैं ना, वो हाँ कौवा बैठना, काकतालीय न्याय भी जिसको कहते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी कुछ है ना, अंधे के हाथ में वो पक्षी आता है, ऐसा कुछ है उसमें, चलो जाने दो। तो ये कौन सी,
हमने दूसरा भी देखा था कि जिसने एक बार रास्ता देख लिया है उसको रास्ता जल्दी मिल जाता है।
हाँ, हो सकता है जल्दी, परंतु वो क्या करेगा, उद्वेलना की क्रिया स्टॉप करेगा, फिर विशुद्ध होगा, और विशुद्धि के द्वारा फिर वो अधप प्रवृत्त की क्रिया चालू करेगा। नहीं होता वो बात नहीं, परंतु यहाँ कहते उससे डायरेक्टली अधप प्रवृत्त करके प्राप्त करने वाले जो ज्यादा है, ये बात कहना चाहते हैं। अतः सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व सत्कर्म के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले जीवों से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व सत्कर्म की उद्वेलना कर सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं। यह अनादि मिथ्या दृष्टि ने उद्वेलना जिनकी पूरी हुई है, हाँ, तो उनकी संख्या ज्यादा है। अथवा भुजगार स्थिति विभक्ति करने वाली जीव राशि का संचय काल पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, परंतु अवक्तव्य स्थिति विभक्ति को करने वाले जीव राशि का संचय काल अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्या कहते हैं, भुजगार को कौन करेगा, जिनके सत्ता है वही करेंगे, तो सत्ता है और भुजगार करेंगे तो वो पल्ले के असंख्यात विभाग काल में तो सत्ता समाप्त होती है, तो उतने काल में जो कोई संचित राशि है उसको भुजगार में लेते हैं, और अवक्तव्य में एक बार उद्वेलना पूरी हुई है और अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वो कभी भी वो करते हैं, तो उतने काल में जो कोई राशि आए उसको ले लिया, अथवा कह के ये दूसरा विकल्प बताए। इसलिए भुजगार स्थिति विभक्ति वाले जीवन से अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। फिर शंका, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करके जो जीव अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के भीतर संचित होते हैं वे अनंत हैं, यह किस प्रमाण से जाना जाता है?
अनंत बताया,
अनंत है, देखो ना, काल अनंत है। एक बार सम्यक होके छूट गए हैं जीव, तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में ऐसे कितने जीव हो गए दोबारा जिन्होंने भी सम्यक तो नहीं प्राप्त किया है। महाबंध में कहे गए प्रकृति बंध संबंधी अल्पभूतों से जाना जाता है, जो इस प्रकार है। छह कर्मों के ध्रुव बंध वाले जीव सबसे थोड़े हैं।
इसमें आयु को छोड़ा ना?
हाँ, छह कर्म ने मूल प्रकृति लेना है।
और दूसरा कौन सा छोड़ा है?
मोहिनी को ही छोड़ेंगे ना? छह कर्मों के ध्रुव बंध वाले जीव सबसे थोड़े हैं, इनसे सादी बंध ध्रुवबंधी यानी ध्रुवबंधी प्रकृति लेना। ध्रुवबंधी में कौन कौन होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मौनी है, ये तो है ही है ना। और फिर आयु को तो वहां छोड़ ही देते हैं। ध्रुव बंदी में गोत्र कर्म कहाँ आता है? नहीं आता है।
उच्च गोत्र नीच गोत्र तो निरंतर बंधे
वो प्रतिपक्ष वाली होगी ना, उच्च और नीच,
पर उसमें तो एक तो बनता है ना,
एक बंधेगा। हाँ, वैसे तो सभी आयु बिना सभी ध्रुव बंदी है, वैसे वैसे देखेंगे तो मूल प्रकृति की अपेक्षा,
इसीलिए मैंने पूछा।
देखो, अगर हम छह कर्मों के ध्रुव बंध वाले जीव सबसे थोड़े हैं, देखो क्या कहना चाहते हैं, इनसे सादी बंध वाले जीव अनंत गुणे हैं, इनसे अबंधक जीव अनंत गुणे हैं,
अबंधक तो सिद्ध ले लिए ना।
देखो, हम पूरा पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। इनसे अनादि बंध वाले जीव अनंत गुणे हैं, इनसे अध्रुव बंध वाले जीव विशेष अधिक हैं, इस सूत्र से जिन्होंने पहले उपशम सम्यक को प्राप्त किया है ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे होते हैं, यह जाना जाता है। देखो, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध कब कहेंगे? जो अनादि से होता है उसको ध्रुव बंध कहेंगे, और एक बार बंध होना रुक गया है और बाद में दोबारा बंध होता है तो उसको अध्रुव कहेंगे। जैसे ना, उपशम सम्यक तो प्राप्त किया है तो मिथ्यात्व का तो बंध रुक गया था और फिर उसका बंध होने लगेगा तो उसको अध्रुव बंध कहेंगे। देखो, पूरा पढ़ेंगे, परंतु जिन्होंने पहले आगे के पृष्ठ पर 100 पेज पर जिन्होंने पहले सम्यक्त को प्राप्त किया है ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव ध्रुवबंधक जीवों से अनंत गुणे है, यह बात युक्ति से जानी जाती है, जो युक्ति इस प्रकार है। अब ये पढ़ेंगे। वर्ष पृथक्त्व के अंतराल से यदि संख्यात उपशांतचर जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होते हुए पाए जाते हैं, उपशांतचर याने हाँ श्रेणी वाले,
तो एक बार श्रेणी चढ़ के वापस
वो वर्ष पृथक्त्व का अंतर है ना, उपशम श्रेणी वाले जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होते हुए पाए जाते हैं। ये कितने ही प्रकृतियों का, जब देखो ग्यारहवें गुणस्थान में गए हैं आप, देखो छह प्रकृति की बात चल रही थी ना, ये सबसे अंत अल्प कम है। तो दसवें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का बंध था, आयु और मोह को छोड़कर बाकी सब,
बाकी सब का
दसवें में। ग्यारहवें में,
तो
एक वेदनियों के अलावा अन्य किसी का बंध नहीं है, दोबारा नीचे आते हैं तो बंध शुरू हो जाता है, तो उनको सादी बंध कहेंगे और ध्रुव बंध कहेंगे। चल मेरी बात, अब क्या कहते हैं, ये युक्ति पढ़ेंगे तीसरी। देखो देखो बंध के जो होते ना, बंध के जो होते ध्रुव बंध होता है, ध्रुव बंध का अर्थ है अनादि से बंध चल रहा है और अभव्यों में तो अनंत काल चलेगा, तो ध्रुव इसलिए कहते हैं कि अपनी अपनी विच्छित्ति होने तक वो निरंतर बंधता है, उसको ध्रुव कहेंगे। जैसे ज्ञानावरण का ध्रुव बंध कहेंगे, कब से चला रहा है, अनादि से चला रहा है, कब तक चलेगा,
दसवें गुणस्थान तक चलेगा,
तो उसका बंध दसवें गुणस्थान तक है, तो दसवें गुणस्थान के बाद वो उसका बंध रुक गया। अभी जो क्षपक चढ़ता है तो उसके तो कोई बात ही नहीं है, जो ग्यारहवें में गया और वापस आया दसवें में, तो उसका ज्ञानावरण का फिर बंध शुरू होगा। अब उसको क्या कहेंगे, सादी कहेंगे।
तो छह प्रकृति ऐसे हो गई जिसका बंध,
और अध्रुव ऐसा भी कहते हैं जो प्रतिपक्ष वाली कभी बनती है कभी नहीं बनती, उसको भी अध्रुव कहेंगे। उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा उनको भी अध्रुव कहेंगे। मूल प्रकृतियों की अपेक्षा लेना है तो अनादि से बनती है, अब बंध रुक गया। ज्ञानावरण की तो पांचों की पांचों बनती है ना, तो उसको ध्रुव बंदी कहा है, वह अनादि बंदी, अनादि से बनते आए हैं, तो अनादि बंध कहेंगे। सादी बंध कब कहेंगे, एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है उसके सादी बंध हुआ है, अब एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है उसका बंध शुरू हुआ है। अब ऐसे कितने जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रहेंगे, एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है वो, उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शुरू हो गया किसी एक जीव का, अब उस अर्धपुद्गल परावर्तन काल में कितने जीव ऐसे होंगे कि जो ऑलरेडी श्रेणी चढ़ के उतर के आएंगे, श्रेणी चढ़ के ये बहुत सारे होंगे ना, एक बार संख्यात हो गए, अर्ध वर्ष पृथक्त्व में संख्यात हो गए, टोटल संख्या अनंत हो जाएगी, अनंत काल है ना। तो यहाँ क्या कहते, देखो वर्ष पृथक के अंतर, ये कल फिर पूरा पैराग्राफ लेते पेज 99 से ही। हाँ वर्ष पृथक में संकेत, अर्ध पुद्गल परावर्तन में अनंत हो जाते हैं। हाँ। शंका से हाँ, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। मयंक भाई।